पृष्ठ संख्या 7 खा आधुनिक हिंदी कविता और नवजागरण। हिंदी कविता की आधुनिक संवेदनाओं के सृजन में नवजागरण की भूमिका अहम है। 19वीं शताब्दी से भारतीय इतिहास के आधुनिक चरण का पृष्ठ संख्या 8 प्रारंभ होता है। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन अपनी व्यापकता के बावजूद देश के सभी कोनों में नहीं फैल सका, उसी प्रकार नवजागरण भी इसका प्रसार धीरे धीरे हुआ। देश में सबसे पहले इसका अरुणोदय बंगाल के क्षितिज पर हुआ। SC सरकार के अनुसार 1757 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत होता है। इसी वर्ष प्लासी के युद्ध और अंग्रेजों की विजय तथा बंगाल के नवाब की पराजय ने भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करा दी। 1757 ईस्वी के ठीक एक वर्ष बाद 1857 ईस्वी में, यहाँ पर वाक्य गलत है, 1757 ईस्वी के ठीक एक वर्ष बाद 1857 ईस्वी में जब स्वतंत्रता का प्रथम शंखनाद हुआ, तक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की जड़ें जम चुकी थी। इस प्रकार हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में आधुनिक काल बंगाल से लगभग 100 वर्ष बाद आया। इसी अर्थ में भारत में आधुनिकता को लाने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को दिया जाता है, जो बहुत हद तक सही भी है। 1853 ईस्वी के न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित अपने एक लेख में कार्ल मार्क्स ने इसकी ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा था कि इन्वर्टेड कॉमा, यह सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ भी किया था, उसके पीछे उसके निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। उसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह दुष्टतापूर्ण था। पर प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मनुष्य जाति एशिया की मौलिक व्यवस्था में सामाजिक क्रांति हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है? यदि नहीं तो इंग्लैंड ने जो अपराध किए, इस क्रांति को लाने में वह अनजाने इतिहास का हथियार बन गए। इन्वर्टेड कॉमा बन। अंग्रेजों के आने से शिक्षा, रेल, डाक, तार आदि जीवन की बुनियादी सुविधाओं में बदलाव हुआ। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। उसने संस्कृत और अरबी फारसी के मदरसे शिक्षा का विरोध किया तथा उसके स्थान पर आंग्ल भाषा में शिक्षा की संस्तुति की। जब देश में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, तब तक शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बहुत कुछ बदल चुका था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। मिल्टन, जॉनसन, शेली, कीट्स, टॉमसन, काउफर तथा वर्ड्सवर्थ को पढ़कर भारतीय समाज जागने लगा था। अंग्रेजी की कविताओं, उपन्यासों और नाटकों का हिंदी में अनुवाद पढ़कर यहाँ का साहित्यिक समाज भी सजग होने लगा था। अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव भारत में पड़ा, उसके दो वर्ग बन गए, एक अंग्रेजी शिक्षक का समर्थन और दूसरा संस्कृत शिक्षा का। स्वामी दयानंद सरस्वती और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारत के उन स्वप्न दृष्टा चिंतकों में थे जो चाहते थे कि देश में अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा साथ साथ दी जाए। उन्होंने अपने इस संकल्प को साकार भी किया। पृष्ठ संख्या 9। भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद मध्यकालीन जड़ता के खिलाफ धीरे धीरे समाज लामबंद होने लगा। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही अनेक धार्मिक आंदोलन उठ खड़े हुए, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नवजागरण की इस बेला में आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर रखने का कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। आधुनिकीकरण के सिलसिले में ही उन्होंने 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसकी मूल विचारधारा वेदांत के अद्वैत और इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित थी। इसमें मूर्ति पूजा तथा समस्त प्रकार के बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया। लाक, ह्यूम और डेकार्ट की भांति उनकी विचारधारा में आस्था की जगह तर्क और बुद्धि की प्रधानता थी। राजा साहब ने देश की जनता को जगाने के लिए पश्चिमी शिक्षा पद्धति की वकालत भी की। उनकी मृत्यु उपरांत पंडित केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के अभियान को आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटने का नारा देते हुए पुराणों की ऐतिहासिकता का खंडन किया। स्वामी जी अलौकिक प्रतिभा के धनी महापुरुष थे जो वेदों को सार्वभौम सत्य का प्रतीक मानते थे। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर प्रहार किया। उन्होंने धर्म के भीतर व्याप्त बुराइयों का परिष्कार करने तथा भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सबसे बड़ा कार्य 1886 में भारत भर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना थी। राजा राममोहन राय की भांति वह भी वैदिक और आंग्ल शिक्षा साथ साथ दिए जाने के समर्थक थे। 1867 ईस्वी में बम्बई में ही डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज बनाया जिसमें महादेव गोविंद रनाडे जैसे लोग भी सम्मिलित थे। पाश्चात्य आचार विचारों को ब्रह्म समाज और आर्य समाज जहाँ आगे बढ़ा रहे थे, वहीं रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उसे वेदांत और उपनिषदों के दिव्य ज्ञान से चुनौती थी। यदि राजा राममोहन राय भारत के मस्तिष्क और दयानंद बलिष्ठ बाहु थे तो रामकृष्ण उसकी आत्मा थे। वह सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर विवेकानंद ने 1898 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध व्याख्यान देकर जब वह स्वदेश लौटे, सारा देश उनके स्वागत में खड़ा हो गया। वह पश्चिम के सामने पूरब के अध्यात्म की धाक जमा चुके थे। उनके ओजस्वी विचारों ने भारत की आत्मा को जगाने का कार्य किया तथा वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। इस दृष्टि से ईसाई पृष्ठ संख्या 10 मिशनरियों के योगदान को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। आधुनिक हिंदी कवियों की अनेक रचनाओं में इस नवजागरण की अनगूंज सुनी जा सकती है, जैसे गिरिजा कुमार माथुर की पूरब की किरण शीर्षक रचना, जिसे पढ़कर प्रतीत होता है कि देश पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के आलोक में अंधविश्वासों और जड़ मान्यताओं के कुहासे से निकलकर बाहर आ रहा है। पूरब में जिंदगी की उठ रही किरण जो भविष्य सूर्य धरो मुक्ति के चरण है, अतीत रैन मलिन दीपक इतिहास का, पीत प्रभा जीवन अवरुद्ध पथ विकास का, दीप बने सूर्य करे नवजन वंदन, वो भविष्य सूर्य करो मुक्ति के चरण। पुनर्जागरण की विचारधारा ने मूर्ति पूजा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह आदि का समर्थन किया। उसने समाज में व्याप्त वर्ण, जाति, संप्रदाय और मजहब के वैमनस्य की खाई को काफी हद तक पाटने का कार्य किया। इतना ही नहीं, नवजागरण की चेतना ने भारतीय समाज को स्वतंत्रता मुक्ति के लिए भी नए सिरे से प्रेरित करने का कार्य किया। हिंदी कविता पर इस चेतना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। भारतेंदु और द्विवेदी युगीन कवियों का काव्य इसका प्रमाण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, कवि सम्राट हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही आदि की रचनाओं एवं पत्र पत्रिकाओं में नवीन चेतना की प्रवाहमयता को सहज ही देखा जा सकता है। भारतेंदु युग पर काम करते हुए सुधी विद्वान डॉक्टर राम निरंजन परमलेंदु ने लिखा है कि यूनाइटेड कॉमा भारतेंदु कालीन भारत के सामाजिक परिवेश में यद्यपि नवजागरण, समाज सुधार, आत्म चेतना और आत्म गौरव की किरणों का प्रस्फुटन हुआ तथा वर्ण भेद, एकता के अभाव, सांप्रदायिक सद्भाव, असामायिक वैधव्य की समस्या, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, जाति भेद, नारी अविद्या, देशीय कला और उत्पादन का ह्रास, गोवध, वेश्यावृत्ति, कपटी और चरित्रहीन साधुओं और पुलिस के आतंक, निःशुल्क आश्रय, निर्धनता, अतिशय कर के बाहुल्य, सरकारी कर्मचारियों में कर्तव्य निष्ठा के अभाव आदि की कालिमा भी वहाँ घनीभूत थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद। यही कारण पृष्ठ संख्या 11 था कि आज़ादी की प्राप्ति में हमें 100 वर्ष और लग गए। भारतेंदु के नाटकों में इन दृश्यों को देखा जा सकता है। भारत दुर्दशा का एक दृश्य देखिए। जाति अनेकन करी, नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सवंसो, बरन छुड़ायो, जन्म पत्र विध मिले वह नहीं होत देत अब, बालकपन में ब्याह प्रीति बन नाश कियो सब, कर कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज भार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचार्यो, रोकी बिलायत गमन कूप मंडूक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाए प्रचार घटायो, बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर को सब विमुख किए हिंदू घबराई। यह भारतीय युग के समाज का सच है जो हमें थोड़ी देर के लिए कबीर के समाज की याद दिला देता है। जैसे कबीर ने अपने समय के समाज का पथ प्रदर्शन किया, वैसे ही भारतेंदु ने अपने समय के समाज का, और यहाँ तक आकर नवजागरण, डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में अपना तीसरा सोपान लगभग पूर्ण कर लेता है।